अध्याय एक, तोकुगावा का पतन, डाउनफॉल ऑफ द तोकुगावाज। पृष्ठ संख्या एक। अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार तोकुगावा का पतन उस संकट का परिणाम था जो जुलाई 1853 ईस्वी में कॉमोडोर पैरी के आगमन और युद्धपोत कूटनीति गनबोट डिप्लोमेसी के माध्यम से जापान को खोलने से पैदा हुआ था। जीबी सैनसम के अनुसार जिसने द्वारा खोले वह बाहर से आया आह्वान नहीं था बल्कि आंतरिक विस्फोट था। वाट ओपेंड द डोर्स वॉज नॉट समन्स फ्रॉम विदाउट बट एन एक्सप्लोशन फ्रॉम विद इन। जापान के पतन की प्रक्रिया का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि इसके पीछे जापानी राजनीति का स्वरूप और तत्कालीन संकटमयी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां थीं। इस परिदृश्य ने पैरी के आगमन के संकट को और भी बढ़ा दिया और उसके आगमन के बाद पतन की प्रक्रिया और उन्मुक्त हो गई और इसने तोकुगावा सत्ता का पतन कर दिया। समाज में व्याप्त संकट के अध्ययन से पहले तोकुगावा राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की मुख्य विशेषताओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। जापानी राजनीति के शिखर पर नेतृत्व दो अधिकारियों के बीच बंटा हुआ था। इनमें से एक तेनेनो सम्राट, अर्धदेव सम्राट था जो पुराने शाही राजधानी क्योटो में एकांतवास कर रहा था और दूसरा शोगुन था जो एदो स्थित राजधानी में निवास कर रहा था। शोगुन 250 दायमियो का सामंतीय अध्यक्ष था। यह दायमियो सारे देश में था। सम्राट का राजनैतिक कार्य शोगुन की सत्ता और शक्ति को वैध सिद्ध करना था और शोगुन प्रमुख सामंत के रूप में सारे देश पर शासन कर रहा था। वास्तव में शाही परिवार और दरबार के रख रखाव के लिए वित्तीय सहायता देने वाला शोगुन सम्राट का संरक्षक बन गया था। शोगुन की सरकार को शोगुनेत या बाकुफू के नाम से जाना जाता था। इस बाकुफू की राजनीतिक व्यवस्था को बाकुहान कहा जाता है। इस तरह यह विभिन्न हानों और वाकुफू को आपस में जोड़ने वाली कड़ी थी। यह हान दायमेओ के अधीन थे। इस तरह यह एक जटिल संरचना थी। बाकुहान व्यवस्था वाकुफू और 250 दायमियो हान के समांतर चल रहे थे। बाकुहान व्यवस्था बाकुफू और 250 दायमियो हान के समांतर चल रहे ढांचे का नाम थी। इस संदर्भ में जे डब्ल्यू हॉल ने यह टिप्पणी की है कि बाकुहान व्यवस्था से जो विशिष्ट सरकार उत्पन्न हुई वह जापान में अनोखी थी और दो जापानी राजनीतिक व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करती थी, राष्ट्रीय सत्ता के रूप में शोगुनेट का और प्रांतीय प्रशासकों के रूप में दायमियो का। संक्षेप में शोगुन पूरे देश का प्रशासन दो तरह से चला रहे थे। तोकुगावा परिवार के अधीन देश का एक चौथाई हिस्सा था जिसका प्रत्यक्ष प्रशासन शोगुन अपने द्वारा नियुक्त समुराय से करवा रहा था। सभी प्रमुख खदानें और बंदरगाह जैसे ओशाका, नागासाकी और क्योटो का पुराना शहर इसी हिस्से में आते थे। बाकुफू इसी से धन जुटाता था और इस क्षेत्र पर उसका अधिकार संपूर्ण था। तीन चौथाई बचे हुए हिस्से पर दायमियों के माध्यम से शासन किया जाता था। यह अप्रत्यक्ष शासन व्यवस्था तोकुगावा के लिए चिंता का विषय थी। यहाँ पर उसकी सत्ता संपूर्ण नहीं थी और अपने अपने हान क्षेत्र में सभी दायमियो स्वतंत्र थे। इस बात की संभावना थी कि यह सभी तोकुगावा के खिलाफ गठबंधन कर सकते थे। बाकुफू दायमियो के बाहरी मामलों पर नियंत्रण तो रखता था परंतु आंतरिक मामलों में उसने हस्तक्षेप नहीं किया। यह स्थिति तब तक लागू होती रही जब तक दायमियो उसके प्रति स्वामी भक्त थे। इस तरह राजनीतिक सत्ता केंद्रीकृत नौकरशाही युक्त वाकुफू और 250 दायमियो हानों के बीच व्याप्त थी। दायमियो की तीन निम्नलिखित श्रेणियां थी, क शिम्पन, दायमियो जो तोकुगावा परिवार के ही संबंधी थे, इनका प्रशासन में विशेष प्रभाव था। ख फुदाए दायमियो जिन्होंने तोकुगावा के प्रति अपने निष्ठा 1600 में सेकिगाहार की लड़ाई से पहले व्यक्त की थी। यह वाकुफु को प्रति निष्ठावान थे और एक इतिहासकार ने इनकी स्वामी भक्ति के प्रति टिप्पणी देते हुए लिखा है कि यह तोकुगावा से भी अधिक तोकुगावा थे। दे वेयर मोर तोकुगावा देन द तोकुगावा देमसेल्फ। ग तोजामा दायमियो जिन्होंने अनमने ढंग से तोकुगावा की सत्ता को स्वीकार किया था। इन्हें न तो स्वामी भक्त माना गया था और न ही बाकुफु प्रशासन में शामिल किया गया था। इन्हें जापान के दूर दराज के हिस्सों में हान दिए गए थे। इन दायमियों में से अधिकांश सत्सुमा और चोसुहानों से संबंधित थे, यद्यपि इन्होंने तोकुगावा सत्ता के समक्ष घुटने टेक दिए थे, परंतु यह विरोधी बने रहे तथा 250 वर्षों के अंतराल के बाद उनकी सत्ता को समाप्त करने में सफल रहे। सभी दायमियों शोगुन के व्यक्तिगत नौकर माने गए थे और वह उसके प्रति निष्ठा, शपथ, ओथ ऑफ पर्सनल एलिजियंस से बंधे हुए थे। यह निष्ठा नए शोगुन के सत्तारोहण के अवसर पर दोबारा व्यक्त की जाती थी। इस तरह बाकुहान व्यवस्था जांच और संतुलन, चेक्स एंड बैलेंस पर आधारित थी। दायमियों पर अनेक नियंत्रण रखने वाले अंकुश और नीतियाँ लागू की गई थी ताकि वह अपने अधिकारों को न बढ़ा सके तथा न ही शोगुन विरोधी गुट बना सके। शांकिन कोताय व्यवस्था, बंद द्वार नीति और कन्फ्यूशियन सिद्धांतों के प्रति निष्ठा ऐसे माध्यम थे जिन्हें अपनाकर दायमियों की सत्ता पर अंकुश लगाया गया था। शोगुन द्वारा विभिन्न दायमियों को हान इस तरह दिए जाते थे कि विद्रोही दायमियों को दूरदराज के हिस्सों में भेजा जाता था या उनके आसपास निष्ठावान दायमियों का ताना बाना बुन दिया जाता था। शांकिन कोताय व्यवस्था नियंत्रण रखने की एक जटिल विधि थी। इसके अंतर्गत सभी दायमियों से यह अपेक्षा की गई थी कि वह अपने निवास का स्थानांतरण अपने हान और एदो में बारी बारी से करेंगे। इस तरह जब वे एदो में निवास करते थे तब शोगुन उन पर कड़ी निगरानी रख सकता था। जब दायमियों वापस जाते थे तो उन्हें अपने परिवार को एदो में ही बंधकों के रूप में छोड़ना पड़ता था। इस तरह शौकीन कोताय व्यवस्था का उद्देश्य उन पर नियंत्रण ही रखना नहीं था, बल्कि उनके वित्तीय संसाधनों को इतना कम करना था कि वे शक्तिशाली ना हो सके। एदो तक यात्रा करने, वहां पर घर बनाने और अपने भोजन व वस्त्र तथा रहन सहन, यात्रा के दौरान सामान उठाने वालों, अपने अधीन सैनिकों के रख रखाव और वेतन देने पर दायमियों को बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता था। उन्हें न केवल असुविधा ही होती थी बल्कि उनका बहुत अधिक धन भी व्यय होता था। यद्यपि दायमियों को टैक्स नहीं देना पड़ता था, परंतु उन्हें शाही किलों की मरम्मत, महल या पुल बनाने के लिए धन देना ही पड़ता था। शोगुन द्वारा दायमियों परिवारों के बीच स्थापित वैवाहिक संबंधों, अधीनस्थ सैनिकों तथा दायमियों के आने जाने की गतिविधियों पर पूरी तरह नजर रखी जाती थी। एक हान से दूसरे हान पर उनके जाने की प्रक्रिया पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पासपोर्ट या प्रवेश पत्र की व्यवस्था को अपनाया गया था। J.W. हॉल के अनुसार प्राक आधुनिक काल में कुछ ही व्यक्ति सरकारी अध्यादेशों और नियंत्रण के इतने भारी बोझ से दबकर रहे हैं। तोकुगावा कालीन जापानी ने अपना जीवन उच्च सत्ता के समक्ष नतमस्तक होकर बिताया। फ्यू पीपल इन द प्री मॉडर्न टाइम्स हैव लिव्ड अंडर सच ए हैवी लोड ऑफ ऑफिशियल रेगुलेशंस एंड सुपरविजन्स। द तोकुगावा जापानीज लिव्ड आउट हिज लाइफ विथ हिज हेड बोर्ड टू हायर अथॉरिटी। तोकुगावा समाज कन्फ्यूशियसवाद पर आधारित था। उसके प्राकृतिक नियमों और सामाजिक वर्गीकरण के सिद्धांतों को न केवल उच्च और निम्न वर्गों पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाया गया, बल्कि सभी वर्गों के लिए नैतिक और आचार संहिता को स्पष्ट करने के लिए भी यह उस चार वर्गीय सामाजिक ढांचे का आधार बनाया गया, जिसमें गुणों और योग्यता के आधार पर समुदाय, किसान, कारीगर तथा व्यापारियों को एक दूसरे के अधीन रखा गया था। सबसे ऊपर समुदाय थे, जो शासकीय वर्ग जिसमें शोगुन, दायमियों तथा सैनिक थे का हिस्सा थे, उनके पास अस्थायी प्रतिष्ठा, धन व शक्ति थी। समुदाय उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणियों में विभाजित थे। उनके नीचे किसान थे, जो जरूरी खाद्य पदार्थ उगाने के कारण ही समाज में दूसरे स्थान के हकदार बनाए गए थे, परंतु उनका शोषण हो रहा था और उन्हें अनेक सुविधाओं से वंचित किया गया था। शासकों के लिए किसान केवल कर देने का ही माध्यम थे, वह उनके उत्पादन का अधिशेष सत्ता शीर्ष व्यक्तियों द्वारा हड़प लिया जाता था। उनके बाद कारीगर आते थे, इनमें बढ़ई, मिस्त्री, बुनकर, मूर्तिकार तथा दूसरे सामान बनाने वाले कारीगर शामिल थे। इनका भी समाज में सम्मान था। व्यापारी चुनिन समाज में सबसे निम्न थे, क्योंकि कन्फ्यूशियन सिद्धांतों के अनुसार एक व्यापारी दूसरे के श्रम पर जीता था। इन चारों वर्गों को उनके निश्चित कार्य सौंपे गए थे। उनका आपस में कोई मेल मिलाप नहीं था। प्रत्येक के लिए अपनी अपनी आचरण संहिता, बुशीदो या चुनिंदो को अपनाना जरूरी था। उपयुक्त लिखित राजनैतिक तथा सामाजिक तोकुगावा कालीन व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि तोकुगावा शोगुनेत का एकमात्र उद्देश्य अपनी शक्ति को बनाए रखना था। उन्होंने केंद्रीकरण के माध्यम से विकेंद्रीकृत सामंतवाद को बनाए रखा, परंतु जैसा कि एक प्रमुख इतिहासकार ने स्पष्ट किया है कि इसे बनाए रखना संभव ही नहीं था। उसके द्वारा निर्धारित नीतियों की कमजोरियों, प्रभावहीन तथा असंगत प्रवृत्तियों ने ही तोकुगावा का पतन कर दिया। यह ऐसी कमजोरी युक्त और अनियमित प्रशासन था, जिसमें कुछ अल्पसंख्यक व्यक्तियों को बहुसंख्यकों के आधार पर लाभ पहुंचाया गया था। एक लंबे समय तक तोकुगावा ने जापान में सफलतापूर्वक राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। उन्हें विभिन्न सामाजिक वर्गों में से किसी भी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा। कालांतर के जापानी समाज में अनेक अस्पष्ट परिवर्तन हो रहे थे। इस समाज के सभी वर्गों, क्रमशः सैनिकों, किसानों, कारीगरों तथा व्यापारियों के स्वरूप और संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे, तथा उन्होंने उन नियमों का विरोध किया जिनका जन्म ही उनके दमन के लिए हुआ था। नियंत्रण करने वाले साधनों जैसे शौकीन कोताए व्यवस्था, समुदाय को ग्रामीण परिवेश से हटाना, शहरीकरण, मुद्रा अर्थव्यवस्था का जन्म तथा एक लंबे समय के लिए स्थापित शांति ने समाज को काफी हद तक बदल दिया। इन्हीं परिवर्तनों ने बाद में विभिन्न वर्गों में सामाजिक, आर्थिक व सैद्धांतिक तनाव को जन्म दिया। निसंदेह स्थापित राजनीतिक व्यवस्था में दायमियों के पास अनेक अधिकार व सुविधाएं थी, परंतु शौकीन कोताय व्यवस्था पर होने वाले खर्च के कारण उनका संतुलन काफी बिगड़ गया। अनेक खर्चे की पूर्ति के लिए ही उन्हें व्यापारियों से उधार लेना पड़ता था। एदो स्थित दायमियों परिवारों के ऐश्वर्यमय जीवन व्यापन पर भी बहुत अधिक धन खर्च होता था। इस कारण अधिकतर दायमियों चेनिन के देनदार थे। नई परिस्थितियों में समुदायों का स्वरूप भी काफी बदल गया। 17वीं शताब्दी तक अधिकांश समुदायों को ग्रामीण इलाकों से हटाकर दायमियों के किलेनुमा शहरों में बुला लिया गया था। इस प्रक्रिया में वे अपने जागीरों से अलग हो गए थे। इसके बदले में उन्हें दायमियों द्वारा चावल दिए जाते थे। युद्ध न होने के कारण समुदायों को गतिहीन जीवन व्यतीत करना पड़ता था। परंतु सैनिक परंपराओं के अंतर्गत उन्होंने तलवार को अपनी वेशभूषा का हिस्सा बना रखा था, किंतु यह केवल दिखावा ही था। शांति के समय उन्होंने लेखन कार्यों में अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इस तरह उनका परिवर्तन एक सामंतीय सैनिक वर्ग से नौकरशाही युक्त विशिष्ट वर्ग में हो गया। शौकीन कोताही व्यवस्था तथा दूसरे नियंत्रण रखने वाले तरीकों से जो वित्तीय समस्याओं में वृद्धि हो रही थी, उनके कारण अनेक दाइमियों ने समुदायों को दिए जाने वाले वजीफों को कम कर दिया। अनेक दाइमियों ने अपने अधीन समुदायों को नौकरी से निकाल दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे रोनिन का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हो गए थे। ज्येष्ठाधिकार के नियम ने रोनिन के लिए अनेक समस्याएं पैदा कर दी। इसके अंतर्गत दाइमियों को ज्येष्ठ पुत्र ही अपने अधीन रख सकता था, जब तक दूसरे पुत्रों को दत्तक पुत्रों के रूप में दूसरे परिवार नहीं अपनाते थे, तब तक वे निराशामय तथा गमगीन जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य थे। युद्ध न होने की स्थिति में ऐसे अनेक व्यक्ति कला, साहित्य और व्यापार के क्षेत्रों की ओर मुड़ गए। अनेक शहरी जीवन के ऐश्वर्य से आकर्षित होकर जुएबाजी, विलासिता तथा दूसरों को तंग करने वाले हथकंडों के चक्र में डूब गए। अधिकांश समुदाय उद्देश्यहीन जीवन व्यतीत कर रहे थे, वह शौर्य को प्रायः भूल चुके थे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक लेखक ने यह कहा कि अधिकांश समुदाय सच्ची सामुदायिक मनोवृत्ति को खो चुके थे। संकट के समय में 10 में से 7 या 8 स्त्रियों की तरह ही कमजोर व व्यापारियों की तरह निकृष्ट थे। चूंकि अधिकांश समुदाय एदो, ओशाका और क्योटो जैसे बड़े शहरों में रहते थे, इस कारण उन्हें चोनीन वर्गों की ऐश्वर्यमयी जिंदगी का ज्ञान भी हो रहा था। वे भी कीमती वस्तुओं को क्रय करना चाहते थे, परंतु अपने सीमित संसाधनों के कारण ऐसा नहीं कर सकते थे। इस कारण इस वर्ग में अधिक निराशा उत्पन्न होने लगी। कई समुदायों ने व्यापारियों से अपने खर्चे के लिए उधार लिया था। WG बीजले के अनुसार 1700 ईस्वी तक संपूर्ण समुदाय वर्ग व्यापक उधार की स्थिति में था। यह उधार की समस्या 18वीं शताब्दी में भी बनी रही और समुदाय ने विवाह संबंधों तथा दत्तक पुत्र गोद लेने की प्रथा के माध्यम से अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए धन जुटाना शुरू कर दिया।